तो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। एक काय उत्सर कर लेते हैं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधिपाथेयम् यावन् मुक्तिपुरी पुरः। छह तक अपन ने स्वाध्याय किया था। अब जैसे मरण का समय चल रहा हो, संलेखना की विधि व्यवस्थित जारी हो, उस समय निर्यापक गुरु अथवा संबोधन देने वाले धर्मात्मा जन, समाधि भावना में क्या है, धर्मात्मा निकट हो, क्या है वो पंक्ति, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, फिर वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो ऐसी भावनाएं उस क्षपक को अथवा साधक को सुनाई जाती है। संलेखना के समय दो बातें आवश्यक हैं, एक तो सही सानिध्य और दूसरी बात है अंदर का आत्मबल। ये दो संयोग जिसके अंदर है उसकी संलेखना सफल होती है, इसको भूल मत जाना। पहली चीज क्या, सही सानिध्य होना चाहिए, और दूसरी चीज अंदर का आत्मबल होना चाहिए। इन दो के बिना संलेखना बिगड़ सकती है। आत्मबल ना हो तो हो ही नहीं सकती संलेखना, और सानिध्य अगर ठीक ना हो तो संलेखना बिगड़ने की संभावना होती है। अब आपका समय निकट है और कोई वहां से ऐसी आवाज करने लग जाए, ये आवाज कब करते हैं लोग, सिसकियों की आवाज कब आती है, जब लगता है कि अपने इष्ट का वियोग हो रहा है। तो ऐसे मोही रागी जीवों को वहां आसपास नहीं रहने देना। जिन्हें भगवान के उपासक को संलेखना के समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, खुद भी उसको कड़क रहना चाहिए अनुशासन। जैसे बड़े वर्णी जी की धर्म माता चिरंजाबाई, उनकी जब संलेखना चल रही थी तब वो सागर में थी, कटरा नाम का एक स्थान है सागर में, वहां पर जहां पर वो संलेखना धारण किए हुए थी, उनको एहसास हो गया था कि अब मेरी आयु 3 महीने से अधिक नहीं है। तो शिखर जी में उन्होंने फिर कुछ संकल्प ले लिए थे, और जब संलेखना चल रही थी, उनकी आत्मकथा तो हर माता बहन को पढ़ने योग्य है। हमारे पास एक पुस्तक है वर्णी दर्शन, उसमें से अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो फिर एक दिन शाम को बैठो, या फिर कभी भी जब आपका समय अनुकूल हो बैठ करके एक जन पढ़े अच्छे से, जिसको पढ़ते आता हो, कोई टीचर हो तो बहुत अच्छी बात हो, वो अच्छे से पढ़ करके सबको सुना दे। इतनी अद्भुत है वो आत्मकथा कि उसको पढ़ने वाले को निश्चित रूप से आत्म अंतर प्रेरणा प्राप्त होती है कि मेरा जीवन भी ऐसा ही सार्थक होना चाहिए। क्योंकि ये पर्याय है, मनुष्य पर्याय, भले उसमें स्त्री भाव मिला हो या फिर पुरुष की काया मिली हो, लेकिन जीवन को सार्थक करने के लिए कुछ सत प्रेरणा
आवश्यक है। तो वो आत्मकथा जो है वर्णी जी की जीवन कथा, जीवन गाथा में बाई श्री की, बाई जी की जो आत्मगाथा है उसको आप देखेंगे तो फिर उसमें ये बात आती है। संलेखना के समय बिल्कुल अंत समय आ गया तो फिर कई लोग आते थे कुछ पाठ सुनाने के लिए, लेकिन बाई जी की दशा को देखकर कभी कभी किसी का गला भर आता था, कभी कोई विकथा करने लग जाता था। तो फिर बाई जी बोलती थी कि ये चर्चा आप इस कक्ष से बाहर करिए, यहाँ नहीं होगी चर्चा। बहुत कड़क थी बाई जी, तो फिर उनको बाहर जाना पड़ता था। और फिर जब पाठ सुनाने आते थे तो उनकी सेवा में जो बहुत निकट थे वो जब पाठ सुनाते सुनाते किसी का गला भर आया तो बाई जी बोलती है कि तुम एक जीव की संलेखना भी नहीं करा सकते हो, चलो और किसी को भेजो। बोले मतलब कितना सावधान, वो अंतिम सांस तक वर्णी जी के लिए आदर्श रही हैं बाई जी, चिरंजा बाई, माता चिरंजा बाई। उन्होंने लिखा है कि ये मेरा जन्मांतर का बेटा होगा, ये वर्णी जी मेरा जन्मांतर का माने किसी अन्य जन्म का मेरा पुत्र रहा होगा, इसलिए मैंने इसको 40 वर्ष तक बेटे के समान पाला है। और क्या चित्रण है, कई बार आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आंसू आए बिना रह नहीं सकते, ऐसी घटना है वो। तो वो आत्मकथा अगर आपको किसी को पढ़ने की भावना हो तो सामूहिक रूप से पढ़ना है वो। वैसे तो अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले हम कितने कितने लोगों के हाथ में सौंपेंगे वो किताब। वो तो एक बार आप अच्छे से बैठो और पढ़ लो, अच्छे से आंसू आ जाए तो आने, तो उसमें शर्माने की क्या बात है, रोना कोई गलत नहीं है। आंसू तो अपनी पीड़ा के आंसू पाप का कारण है, पश्चाताप के आंसू पुण्य का कारण है, भक्ति के आंसू पुण्य का कारण है, करुणा के आंसू भी पुण्य का कारण है। बताओ तो आंसू खराब कहां है, आंसू नहीं आना गलत बात है। कई लोगों की आंखें बहुत वर्षों से सूखी हुई है, आते ही नहीं आंसू। अरे एक बार पछता लो अपने कुकर्मों पर, और वो आंसू निकलना बहुत अनिवार्य है। बिना पश्चाताप के प्रायश्चित व्यर्थ है, और बिना प्रायश्चित के पश्चाताप व्यर्थ है। क्या मतलब, आप पछता लिया आपने लेकिन प्रायश्चित नहीं किया, दोनों सापेक्ष है। तो दोनों बातें अगर होंगी तो फिर अपना शोधन होगा, और शुद्धिकरण के लिए ही तो मनुष्य पर्याय मिली है। अगर आपका कोई और इरादा हो इस मनुष्य पर्याय से तो फिर हम उसमें रोक टोक नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। आपको लगता है कि नहीं कोई और काम करना है मेरे को मनुष्य पर्याय में, ये सब काम तो महाराज आप लोग करते रहो और जिनको करना है वो करें, लेकिन मुझे दूसरे काम है, तो भाई ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसने रोका आपको, आपको कोई और काम है तो करो। तो ये सारी बातें उस क्षपक को या साधक को सुनाई जाती। क्षपक मुनि को कहते हैं जिसने संलेखना अंगीकार की, और साधक श्रावक को कहते हैं जिसने संलेखना अंगीकार की। तो भगवान से क्या कह रहा है वो, उसका हृदय कह रहा है जीर्ण हुई मम जीवन रेखा आज, अतः मेरे स्वामी हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन करके शिव पथ गामी। जब तक मोक्ष नगर ना आए मुझे मार्ग का व्यय देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। कृमिगण पूरित जरा जर्जरित, कारा है मानव काया, अपने कर्म उदय के कारण मैंने यह बंधन पाया। यदि यह नश्वर नष्ट हो रही मैं काहे को घबराऊं, मैं हूं ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना अपनाऊं। जब कोई जन धूमधाम से अन्य नगर रहने जाता, नव निवास के शुभ अवसर पर वह न तनिक भी घबराता, मृत्यु महोत्सव की बेला में ज्ञानी तुमको भय कैसा। आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा, सत्पुरुषों ने सत्पात्रों को जो जो उत्तम दान दिया, स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर मृत्यु कृपा से प्राप्त किया, तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से। देखो जिसने पुण्य कमाया है उसको मरने से क्या डरना, दुर्गति में तो जाना नहीं। अब जिसको दुर्गति में जाना उसको डर लगे तो वो तो वाजिब है कि भाई सजा मिलने वाली है तो डर लग सकता है, लेकिन जिसने अच्छे काम किए हैं जीवन में उसको मरने से कैसा डर। इष्ट प्रदाता को इस जग में, सज्जन क्यों डरे मृत्यु से जो चेतन को हितकारी, इष्ट प्रदाता को इस जग में कौन कहेगा अपकारी। तन पिंजरे में पड़ी हुई है आत्मा गर्भ अवस्था से, आकुल व्याकुल है इस तन की कर्माधीन व्यवस्था से। ज्यों बंदी को बंदी गृह से राजा बंधन मुक्त करे, मृत्यु राज बिन तन बंधन से कौन मुझे निर्मुक्त करे। नर्तन पा, नर नर्तन करता, नर्तन करने का मतलब नृत्य करता है, विषय कक्षाओं में नाचता रहता है। नर्तन पा नर नर्तन करता, कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला दुष्ट पिंड यह नर्तन है, इसी पिंड से पिंड छुड़ा कर। देखो इसको दुष्ट पिंड कहा है नर्तन को, क्यों? क्योंकि इस नर्तन से जीव सप्तम नरक जा सकता है। सारे प्राणी नहीं जाते सप्तम नरक, सप्तम नरक में केवल पुरुष और मछली जाती है, और कोई प्राणी सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होता। स्त्रियां भी नहीं जा सकती, और बाकी और कोई जीव भी, शेर भी नहीं जा सकता। जीवन भर मांस और खून का आहार करने वाला शेर सप्तम नरक नहीं जा सकता, लेकिन पुरुष जा सकता है। तो इसी पिंड से पिंड छुड़ाकर मृत्यु सखा सुख देता है, आत्मदर्शियों से प्रतिफल में स्वयं नहीं कुछ लेता है। इसके आगे सातवां काव्य जो था वो ये था, मृत्युकल्प द्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले सपश्चात् किं करिष्यति। मृत्यु कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष से जो मांगो सो प्राप्त होता है। एक दोहा आता है 12 भावना में, जांचे सुर तरु देय सुख। जांचे का मतलब याचना करने पर, सुर तरु का अर्थ कल्प तरु, कल्प वृक्ष देय सुख, सुख देता है। अब अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे आकर के सोचे कि कोई शेर ना आ जाए तो उसको बुद्धिमान कहोगे या बेवकूफ? क्योंकि कल्प तरु के नीचे सोच रहा है वो, कल्प तरु के नीचे जो सोचे वही हाजिर हो जाए। अब शेर आ गया, अब इसके बाद उसको क्या सोचना चाहिए था? चला जाए, सीधा तरीका ये था। लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि मुझे खा गया तो खा जाता है फिर वो। यहां पर कह रहे हैं कि मृत्यु एक कल्प वृक्ष है, उसकी प्राप्ति होने पर जिसने आत्मार्थो न साधित, आत्मकल्याण नहीं साधा। देखो कल्प तरु से आप आत्मकल्याण साध सकते हो, लेकिन जिसने नहीं साधा सह जन्म जम्बाले निमग्न, वह संसार रूपी कीचड़ में धस जाता है, और संसार रूपी कीचड़ में धसा हुआ वह प्राणी पश्चात किं करिष्यति, फिर आगे भविष्य में क्या कर पाएगा? कीचड़ में फंसने के बाद फिर क्या करेगा? माने कल्प तरु मिला लेकिन उसको गंवा दिया, आत्मकल्याण को नहीं साधा, अब क्या कर सकता है? अब तो मौका निकल गया, ट्रेन छूट गई, पेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गया, अब क्या कर सकते हो? गया काम से। जिसको अवसर प्राप्त न होता, उसे न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता, वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु मृत्यु कल्प तरु को पाकर भी, जो हित साधन ना करता, वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंक से ना तरता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी अष्टपौर में कहा है कि जब तक तेरी इंद्रियां ठीक ठाक है और जब तक तेरे शरीर को कुटिया का रूपक दिया, तेरी शरीर रूपी कुटी में, झोपड़ी में जब तक बुढ़ापे की आग नहीं लगी, तब तक आत्मा का हित कर ले, वरना इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, काम नहीं करेंगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब तू क्या कर पाएगा। कहते हैं कि 60 साल की उम्र के पहले अगर कोई दीक्षा ले ले तो वो अच्छी साधना कर सकता है। और एक बात और है, अभी हमने एक प्रवचन पढ़ा था एक मुनिराज का, उसमें लिखा था कि प्रथम संतान का विवाह होने पर जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है उसको बुढ़ापे के कष्ट नहीं होते। प्रथम संतान का विवाह होने पर जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उसको बुढ़ापे के कष्ट नहीं होते। और ऐसी और भी कई बातें शास्त्रों में उपलब्ध होती हैं। जब तक तेरी मति ठिकाने हैं तब तक तू ठिकाने लग जा, जब तक तेरी मति ठिकाने हैं तब तक तू ठिकाने लग जा, वरना कभी कुमति का प्रभाव पड़ गया तेरे ऊपर तो फिर वो तुझे दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए देखो, आप यहां गुजरात में कितने ऐसे घर हैं जिनके घरों में बड़े बुजुर्गों ने दीक्षा ली है, संलेखना अंगीकार की है। आप इस भरोसे मत बैठे रहना कि मैं भी बुढ़ापे में ऐसा कर लूंगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि उतना मामूली काम नहीं है कि हर कोई कर ले, उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। एकदम रोम रोम से वो भावना हो कि मुझे ये करना ही है, तब जाकर के वो कार्य सफल होता है। और जिसकी भावना नहीं है और कदाचित किसी को ऐसा पुण्य उदय में आ जाए कि दीक्षा हो गई, तो फिर उस दीक्षा के बाद जो विशुद्धि आनी चाहिए वो कभी हासिल नहीं होगी। जो चीज आसानी से प्राप्त होती है उसका मूल्य पंचम काल का मनुष्य नहीं आंख पाता। सुन रहे हैं आप ध्यान से? थक तो नहीं गए? लंबा चौड़ा हो गया क्या व्याख्यान? पंचम काल में आसानी से मिली हुई वस्तु की कीमत मनुष्य नहीं समझ पाता। तो अगर दीक्षा दुर्लभता से प्राप्त होती है, अगर पूरी भावना से उसको अंगीकार करते हो, तो फिर आगे चल करके ऐसी विशुद्धि प्राप्त होती है जो घर में कभी नहीं प्राप्त हो सकती। दीक्षा के बाद विशुद्धि बहुत अद्भुत प्राप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि जिसको विशुद्धि प्राप्त हुई है उसकी बात सुनकर आप ये नहीं सोच लेना कि जो भी दीक्षा लेते हैं सबको विशुद्धि प्राप्त होती होगी और मैं भी ले लूं दीक्षा। ये उतावली का काम नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें और भी विचारणी होती हैं। आप पहले घर में जहां तक बढ़ सकते हो वहां तो बढ़ लो। अभी घर में रह करके आप कितना बढ़ सकते हैं आगे ये देखो, आप वहां तक तो कदम बढ़ा लो। और फिर एक एक दिन की कीमत समझो। पूजा करते समय वो भक्ति का रस प्रवाहित करो, आहार दान आदि जितने भी धार्मिक कर्तव्य, उसमें वो जो भावनाओं की विशुद्धि है उसके बिना धर्म सुना है। जैसे व्यावहारिक जगत में आपसी स्नेह न हो तो फिर वो व्यवहार आडंबर है। इसी प्रकार धार्मिक जगत में यदि हृदय की भावना न हो तो सारी क्रियाएं भाव शून्य है, नीरस है। और चाहे आप स्वाध्याय के क्षेत्र में चले जाओ, ज्ञान की आराधना करो, लेकिन ज्ञान की आराधना में भी अगर अंदर जीवन में जीवन का रस नहीं आता तो फिर वो ज्ञान कोरा ज्ञान है। कोरा ज्ञान माने ड्राई, जैसे रूखी रोटी होती है ना वैसा, गले नहीं उतरती, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, बहुत देर लगते, वही हाल है। तो यहां पर यह चेतावनी दी गई है सातवें काव्य में कि जब तक अवसर है तब तक लाभ ले लो, नहीं तो अवसर निकलने के बाद, अवसर चूकना एक प्रकार से सौभाग्य को ठुकराना है। क्या याद रहेगा आपको? अवसर को चूकना सौभाग्य को ठुकराना है, और सौभाग्य को ठुकराना दुर्भाग्य से भी बड़ा दुर्भाग्य है। वैसे याददाश्त आप लोगों की जो है उस पर हमें उतना विश्वास नहीं है क्या कहा था अभी हमने? पहला वाक्य क्या कहा था? अवसर गंवाना सौभाग्य को ठुकराना है, ये पहला वाक्य था। अवसर गंवाना सौभाग्य को ठुकराना है। अब ये इसको धर्म क्षेत्र में लेना, नहीं तो आप सोचोगे भाई अच्छा ग्राहक आ गया बेवकूफ वहां मत लगाना इसको। अवसर को खोना सौभाग्य को ठुकराना है, और सौभाग्य को ठुकराना दुर्भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य है। बस इतने ही आज के उपदेश में पर्याप्त है।